ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के प्रमुख नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी की यात्रा के पहले चरण में अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में है। यह यात्रा अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को अधिक मजबूत करने पर केंद्रित है। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 अक्टूबर को मॉरिटेनिया जाएंगी और आखिरी चरण में राष्ट्रपति 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी के दौरे पर रहेंगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर जापान रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना और सहयोग के नए रास्ते तलाशना है। सेना प्रमुख द्विवेदी इचगया जापान में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से मिलेंगे। चर्चा का उद्देश्य भारत और जापान के बीच मजबूत सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि भारत ने मात्र 22 महीनों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 80% 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू कर दी हैं। नई दिल्ली में 5G वैश्विक मानक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 5G रोल ओवर से 2040 तक अर्थव्यवस्था में 450 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की महासचिव जोरेन बोगदान मार्टिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में ITO विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारत एक विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर चुका है। इस अवसंरचना ने उच्च गुणवत्ता के डिजिटल वित्तीय उत्पादों के विकास में सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश अब विश्व के तीसरे महत्वपूर्ण जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बन चुका है। यहां 1,40,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। नई दिल्ली में आज RBI एट 90 उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक डिजिटल क्रांति में प्रवेश करने और उसे सुधारने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत के अनुभव का लाभ अन्य देश उठा सकते हैं। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद यह फैसला किया गया। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है और उसने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उधर पार्टी ने जम्मू कश्मीर भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कोलकाता के चिकित्सा संघों के महासंघ फेमा ने जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल के समर्थन में आज सुबह 6 बजे से 48 घंटे तक चिकित्सा सेवाएं बंद करने का आह्वान किया है। संघ की ओर से डॉक्टर स्वरोद्योत मुखर्जी ने बताया कि इस बंद में आपातकाल सेवाएं शामिल नहीं हैं। मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को आज सुबह बम की धमकी के बाद दिल्ली परिवर्तित कर दिया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं और अब तक जांच में कुछ भी नहीं मिला है। मुंबई से मस्कट जाने वाली इंडिगो की उड़ान को भी इसी तरह की बम की धमकी मिली थी। प्रोटोकॉल के अनुसार विमान को व्यस्त जगह से अलग रखा गया और अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू की गई। मुंबई से जेद्दाह जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को भी बम की धमकी मिली। इस बीच मुंबई हावड़ा मेल को टाइम बम से उड़ाने की धमकी मिली। रेल को जलगांव स्टेशन पर रोका गया और जांच के बाद उसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद रेल अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। भारत अगले वर्ष ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ के अध्यक्ष लुसियानो रोसी ने इसकी पुष्टि की। विश्व कप फाइनल से पहले वे कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।